जब हम बहुत खिंचे नपे तुले इस बात से लोग हमें देखेंगे, लोग हमें क्या सोचेंगे, तो बस अब हम कुरान को जज नहीं कर पाते। कुरान को सुन के रोना ना आना दिल की सख्ती की अलामत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे दिलों को नरम कर दे। अगली सूरत शोरा है, जो हकीकत में अंबिया कराम के मुख्तसर जिक्र वाली सूरत, दावत के तरीके सिखाने वाली सूरत, और जब दावत के जवाब में लोग मुख्तलिफ बातें कहें तो उसका जवाब कैसे देना, और इसी के एंड पे हम पोइट्री और शायरी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीन मीम हरूफ मुकद्दात, ये किताब मुबीन की आयात है, यानी कोई गैर वाज़े चीज़ नहीं। किताब सब खोल खोल कर बयान कर रही है कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। आइए दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह की पसंद नापसंद समझ आ गई है, तो अब हम इसको मानने वाले बन जाएं। इसके बाद नबी की तड़प का जिक्र है, हाईलाइट कीजिएगा। लअल्लका बाखियुन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी, शायद आप इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। खुद से पूछिए, क्या मेरी भी जान जली इस बात पर कि दूसरे ईमान क्यों नहीं ला रहे, दूसरे गुनाह क्यों नहीं छोड़ रहे, दूसरे नाफरमानियां क्यों नहीं छोड़ रहे। आज हम कुरान की दावत को कितना सीरियस लेते हैं, हर एक से पूछिए। और याद रखिए कि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी तक खुद भी पूरे हिदायत पर नहीं आए। लोगों की फिक्र करनी है, और ये तड़प आपसे काम लेती है कि लोगों को मेरी जात से फायदा हो जाए। और अल्लाह के नबी ने दिन रात एक कर दिया, दिन को कोशिशें करते थे, रात को उनके लिए दुआएं करते थे। आपका सीना हंडिया की तरह खोलने लगता था जब रातों को आप कुरान पढ़ते थे। एक एक आयत पे सारी रात गुजार देते कि अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो तू दे सकता है, लेकिन अगर माफ कर दे तो तेरे अपने बंदे हैं। आज मुझे और आपको भी फिक्र करनी है। आप देखिए, इसके लिए शर्त यह है कि हम खुद हिदायत पर आ चुके हैं। डूबता हुआ शख्स दूसरों को कभी डूबने से नहीं बचा सकता। दूसरे को बचाने के लिए अपना सहारा नहीं छोड़ना। बस दफा दूसरों की हिदायत की फिक्र के नाम पर लोग मसलतों में आ जाते हैं। अब जब मसलत में आएंगे, पैगाम बदल गया, दावत बदल गई, आप किस दीन की दावत देंगे, तब्दील शुदा दीन की या रियल दीन की? इसीलिए जो बंदा दूसरों की हिदायत की फिक्र करता है ना, अल्लाह ताला बरकत दे देता है और उसकी अपनी हिदायत को बढ़ा देता है। पीछे हम सहाबे कहफ में पढ़ चुके कि जब वो रास्तों में निकले तो अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी, और वो ऐसी ही जैसे ठुक जाता है। बस आप देखिए, कील है, उस कील पे अगर आपने कोई चीज लटकानी है तो आप उस कील को मजबूत करेंगे ना। इसी तरह जब हम दूसरों को सहारा देने वाले बनते हैं तो हम खुद ब खुद दीन में ठुकने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि दूसरों को हाथ देते देते अपना कुरान और सुन्नत से हाथ ना छूटे। मसलन आप देखिए कि ऊपर है कोई और आप ऊपर उसको बुलाना चाहते हैं, तो अगर आपका अपना हाथ उस सीढ़ी से उतर गया तो आप भी गिरेंगे, वो भी गिरेगा। तो एक खास हद तक फिक्र करनी है, लेकिन ये सोचकर चलो ढीला कर लो, ठंडा कर लो दीन, बहुत सारे ले लेंगे तो वो फिर हिदायत नहीं होगी। और इतना यकीन होना चाहिए हिदायत पर कि जो बात अल्लाह ने कह दी वो सच है। किसी बुजुर्ग का कौल है कि अगर आसमान से भी एक आवाज आ जाए कि लोगों झूठ बोलना बुरी बात नहीं है, तब भी मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका दिल ठुक चुका है कि झूठ बोलना बुरी बात है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम खुद हिदायत के ऐसे कील बन जाए ठुके हुए कि जो दूसरों को बुलाने वाले बन जाए। फिर लोग क्यों नहीं मानते, इतनी तड़प थी नबी की फिर भी सब नहीं माने, तो उसकी वजह अगली आयत में। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं जिनसे इनकी गर्दनें आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जब भी कोई नसीहत आती है ये इससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जबकि ये झुटला चुके हैं, करीब इनको इस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे। और अब हिदायत की निशानियां कायनात में पहली भी दिखाई जा रही है। क्या उन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली? हमने कितनी कसीर तादाद में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। ये जुमला आपको बार बार इस सूरत में मिलेगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा। अल्लाह ताला का मामला कौमों और उनके साथ जो मामला हुआ वो इसी असूल की बुनियाद पे था कि अल्लाह ने नबियों को बचा लिया और झुटलाने वाली कौमों को अपने गालिब होने की वजह से अपने अजाबों से मार दिया। फरमावा इसनाद और अब का मूसा ने तिल कौमिन। इन्हें सिर्फ उस वक्त का किस्सा तो सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा कि जालिम कौम के पास जाओ, फिरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा, मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझको झुठला देंगे, मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान भी नहीं चलती। आप हारून की तरफ रिसालत भेजें और मुझ पर इनके हाँ का एक जुर्म भी है जिसका इल्जाम मुझ पर, इसलिए मैं डरता हूं कि कहीं वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। यहां से दोबारा मूसा और बनी इसराइल का किस्सा शुरू हुआ। तो चंद बातें इस हिस्से में समझ आई कि अल्लाह ताला ने मूसा को एक काम दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा उसके बारे में क्वेश्चन करते दिखते हैं। तो इससे अमल की बात जो हमें मिलती है वो क्या कि जरूरी नहीं कि हमें जो जिम्मेदारी मिले अल्लाह के रास्ते में वो हमें पसंद भी आए, लेकिन हमने इसलिए करना है कि नीड ऑफ द आवर वही है। बाज दफा आप देखिए कि लोगों को जिस काम के करने का शौक होता है ना, उसकी सलाहियत कोई नहीं होती, लेकिन चूंकि उस काम का शौक है और वो दूसरों में भी दिखता है और कुछ काम दिखते नहीं है, तो वो फिर वो काम करने लगते हैं, ढंग का नहीं कर पाते। अल्लाह से दुआ क्या करनी है कि अल्लाह मेरी जो सलाहियत है ना, मुझे उसमें आगे कर दे। देखिए, अगर सवाब चाहिए ना तो जूते सीधे करके भी मिल जाएगा, और अगर शो ऑफ चाहिए, दिखावा चाहिए, तो फिर दीन का काम करने की क्या जरूरत है? फिर तो कोई दुनिया का काम करके भी इंसान अपने आप को मशहूर कर सकता है। और दूसरी बात याद रखिए कि जो खूबी अल्लाह ने जिसको दी उस पर राजी हो जाए, बस अपना मौका अपना हिस्सा उसमें डाल दें। फिर दूसरी बात ये भी पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं था कि मेरे अंदर क्या खूबी है, लेकिन अल्लाह ने वक्त में उनको डालकर कुछ इस तरह से उनका स्किल सेट किया कि जिससे उनको मामला दुरुस्त आ गया। फिर से एक और बात पता चलती है कि जब भी किसी नेकी का मौका आता है ना, तो साथ ही खौफ होता है, मैं कर नहीं सकूंगी, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजर्व नहीं करती, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लूं फिर ना निभा सकूं, फिर क्या है? तो आप इस आयत को याद रखिए कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता है, अल्लाह आसानियां करता है। मसलन जिस तरह बाज़ दफ़ा नई कमिटमेंट्स हैं, आपने रमजान की ये नियत की, अल्लाह ने आपको दे दिया मौका, माशाल्लाह आप 2/3 कुरान तक पहुंचने लगे, चंद दिनों में कुरान पूरा होगा। आपका क्या ख्याल है, आप इस 1 महीने में खुद आए हैं? किसकी मजाल थी मेरे समेत आप में से आने की? सुबह तो आंख ही नहीं खुलती और दिल चाहता चुप कैसे सो जाओ, उठेंगे देखेंगे जब 1 बजा होगा, जो उन्होंने किया होगा किया, आई डोंट केयर। कभी कभी ऐसी भी कैफियत आती है, हम सब इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी है कि ना नींद आए ना भूख लगे ना प्यास है ना बीमार हो। इस स्टेज में कई जगह ऐसा हुआ, आज सुबह मैं उठी, मेरा उठने को दिल ही नहीं कर रहा, और मैं सोच रही कि देखती हूँ क्या होता है, क्या होगा, रिकॉर्डिंग चला लेंगे, मुझे किसने रोकना है? मेरी वला से है ना कुरान का पारा मौजूद है, मैं नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं सो रही हूँ, फिर किस चीज ने मुझे उठाया? इसी चीज ने उठाया कि नहीं, ये मेरी ऑनर है। हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो किसी के सर पे एहसान नहीं है, ये मेरा मुझ पर एहसान है कि मैंने इस काम को करना है। फिर आप देखिए कि फिरौन के पास भी भेजते हुए कह रहे हैं कि अच्छी बात करना, हम कहाँ दूसरों के साथ बात करते हैं, काफिरों के साथ एहसान का मामला अपनों के साथ क्या होगा? लेकिन देखिए फिरौन अपनी फिरौनियत पे आ गया, ताने देने लगा, कहने लगा, फिरौन क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सना पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और इसके बाद कर गया जो जो तू कर गया, एहसान जतला रहा है कि तूने मेरी यहाँ नमक हरामी की, तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, इस वक्त वो काम मैंने नादानिस्तगी में किया, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया, इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया, रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है। तो इसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था। कॉन्फिडेंस देखिए मूसा का, वक्त के बादशाह के सामने खड़े हैं और गुलाम कौम का एक शख्स है, आज के दौर में कह लीजिए एक दबे हुए मुसलमान इलाके से उठा हुआ शख्स अपने वक्त की सुपर पावर के आगे बोल रहे हैं, लेकिन हक बंदे को कॉन्फिडेंस देता है, झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया, कहा हाँ मैं भाग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमाया, रहा तेरा वो एहसान जो तू मुझ पर जता रहा है, इसकी हकीकत यह कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था, यानी मेरे पे बात करते हो, जरा अपने दामन में भी झांको। फिरौन ने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या होता है, इतना तकब्बुर था रब नजर ही नहीं आ रहा। मूसा ने जवाब दिया, जरा कॉन्फिडेंस देखिएगा, आसमान और जमीन का रब और इन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने गिर्दो पेश के लोगों से कहा, अरे सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे अबाजदाद का रब भी जो गुजर चुके। फिरौन ने हाजरीन से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहिब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। नऊसुबिल्ला, फिरौन का ये जुमला इसलिए बोल दिया वरना हम मूसा के लिए ये जुमला कभी ना बोलते। देखिए फिरौन का कॉल अल्लाह ने कोट कर दिया कि मूसा को मजनून कह रहे, और मजनून जिन से, जुनून जिस पे जिन्नों का साया पड़ा हो। क्या आज लोग इस तरह दीन वाले की इंसल्ट नहीं करते? ये जुनूनी, ये फनेटिक, ये वो, दिस एंड दैट। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई फिक्र नहीं की, बल्कि क्या कहा, मशरिक और मगरिब और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। फिरौन ने कहा अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी इन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। थ्रेटनिंग, अल्लाह अकबर। मूसा ने कहा अगर मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरीख चीज भी। फिरौन ने कहा अच्छा तू ले आ अगर तू सच्चा है। कैसी क्रॉस क्वेश्चनिंग है, आप देखे चोट है ना। इसीलिए अल्लाह ने बचपन से मूसा को फिरौन के महल में पलवाया ताकि मूसा का कॉन्फिडेंस डिवेलप हो। अब आज बताइए आप तबलीग करें तो कोई नॉन वेस्टर्न बंदा वेस्टर्न शख्स के सामने इस तरह तकरीर कर सकता है? वो तो पहले ही डर जाएगा कि वो तो इंग्लिश बोल रहा है, मेरी तो इंग्लिश ही अच्छी नहीं है। तो इसलिए खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से सेम कल्चर के लोग, सेम लैंग्वेज के लोग ही तबलीग कर सकते हैं। इसलिए फिरौन ने उनकी सुन भी ली। अगर फिरौन उसी इलाके में रहते जहां पैदा हुए थे तो फिरौन ने तो उनको मुंह नहीं लगाना था कि तुम कौन होते हो जो बोलने वाले। तो इसलिए जरूरत है कि आज मुसलमान दुनिया के हर फील्ड में आगे आए। बार बार ये मैसेज आपको मिल रहा है कुरान से, हर फील्ड में आगे जाइए ताकि उस फील्ड में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उधर बात कर सकें। डॉक्टर डॉक्टर से बात करें, इंजीनियर इंजीनियर से बात करें, लॉयर्स लॉयर से बात करें, फिर वो आपकी सुनेंगे। लोग नहीं सुनते दूसरे की बात, हम बराबरी की चोट की बात सुन लेते हैं। जो हमारे हाल हुलिये में बैठा हो, हमारे ही जैसी गाड़ी में बैठ के हम कहते हैं वाह ये कुरान पढ़ा रहे हैं, चलो इसका तो पढ़ सकते हैं, इस फाइन, ये सीख रहे हैं हम भी सीख सकते हैं। और एक बेचारा आप सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी, इतनी मसरूफ, इतनी आला, और कोई बसों में लटकता पटकता आ जाए, और आपके इनकी क्या मजबूरियां, इनको क्या पता हमारे क्या मसले हैं, हमारी तो इनसे वेवलेंथ नहीं मिलती। तो इसलिए जरूरी है हर बंदा अपने स्टैंडर्ड के लोगों में जाए। देखिए स्टैंडर्ड अल्लाह के यहाँ छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन माइंड सेटअप के लिए हर बंदे को अपने लेवल के लोगों को चूज करना चाहिए। कि कुछ लोग हर एक से नहीं पढ़ पाते, हक की तलब लगते फिर कोई फर्क नहीं रहता। क्या आप YouTube पे किसी पंजाबी वाले को सुन रहे हैं या किसी बड़े को सुन रहे हैं या आप किसी अपने मुल्क के सुन रहे हैं, एक दफा तलब लग जाए, एक दफा टेस्ट डिवेलप हो जाए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हक जो है वो दिल को आता है। लेकिन ये उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जिनके अंदर रौनत होती है, खुद को कुछ समझने का ख्याल होता है, वो फिर हर एक की नहीं सुनते, वो कहते जाइए आप हमें तंग ना करें। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों में हमारे लिए सबक है। खैर उनकी जुबान से ये बात निकलती, मूसा ने अपना सा फेंका और यकायक वो एक सरीख असदहा बन गया, कोबरा। फिर इन्होंने अपना हाथ बगल से खींचा, वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। यानी एक डराने वाला मौजजा और एक उम्मीद दिलाने वाला। आज भी यही तबलीग का खूबसूरत नुकता, ना तो लोगों को सिर्फ जहन्नुम की बातें सुना के खौफजदा करके आप आ जाए, और न सिर्फ लोरियां दे के जन्नत के दिलासे देकर आ जाए। अलीमान बैन अल खौफ व रजा, आपकी तबलीग बैलेंस्ड होनी चाहिए। 1 घंटे का अगर आपका दर्स है ना, 15 मिनट जहन्नुम पे बात की है ना, तब 10 मिनट जन्नत पे बात करें, फिर 15 मिनट अमल की बात करें, फिर 15 मिनट आखिर में उनके तस्किए के करें, 1 घंटे का दर्स तैयार है। और शुरू से आखिर तक आप डराते ही रहे डराते ही रहे, कोई बात अमल की नहीं की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इतनी बीमारियां शो करके आ जाते हैं मुआशरे की हम, फिर कहते हैं वक्त खत्म हो गया। तो आप डॉक्टर हैं और आप सारी बीमारी की सिम्टम्स और रीजंस बता के मरीज को क्या बजाइए, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, इलाज बताइए। हर दर्द के एंड पे एक सवाल खुद से कीजिए कि जो सिस्टर्स आ जाई थी क्या वो कोई इलाज लेके गई हैं कि नहीं, और ही क्या तो नहीं बर्पा कर दिया, खबरें इधर उधर की सुनाकर, इधर ये हो रहा है उधर हो रहा है। तो दर्द देना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बैलेंस चीज है। लोगों को वक्त का हिसाब लगाकर चेक कर लीजिए, शुरू में क्या कहना है, बीच में क्या करना है, कहाँ रोक के अब इनकी बात दूसरी तरफ लानी है, और शुरू आखिर खूबसूरत कर लीजिए, बीच की बातें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और मूसा अलैहिस्सलाम के अंदाज से हमें ये बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन मिल गई। फिरौन अपने इर्द गिर्द के सरदारों से बोला ये शख्स यकीनन बड़ा माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने इस जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब मुझे बताइए अगर जादू के जोर से किसी के मुल्क पे कब्जा किया होता तो आज सारी दुनिया के हुक्मरान कौन होते? जादूगर होते, सब पे जादू किया और निकाल दिया। तो ये बिल्कुल एक झूठ है, अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो? उन्होंने कहा इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर समझदार जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचे रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں، اور اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے۔ نوٹ کیجئے گا، جب تک کفر اور جادو پہ تھے تو دنیا پرست تھے، زر پرست تھے، کہتے تھے اس کے بعد ہمیں ملے گا کیا۔ دیکھیے ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، سچا دائی دین کیا کہتا ہے، میں دوسروں کو دوں گا کیا، اور جو جھوٹے دنیا دار قسم کے کہتے ہیں آج ہمیں ملے گا کیا۔ تو ان کے دل کی دنیا کیسے اللہ نے بدل دی تھوڑی دیر کے ایمان کے اندر ہی، اس کا ذکر آگے ہے۔ فرعون نے کہا، ہاں تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تم کو پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم فی غالب رہیں گے۔ یہ نعرہ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، زندہ باد فرعون، زندہ باد جموں، کوئی بھی لفظ زندہ باد ہے وہی لفظ ادھر ہے، یعنی سراسر شرکیہ لفظ تھا۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، مان گئے ہم رب العالمین کو۔ تعصب نہیں ہوتا تو بندہ فوراً حق کو قبول کرتا ہے، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تو موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ دیکھیے یہ فرعونیت ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں پہ شک کرنا، نہیں اندر سے تم کسی اور سے ملے ہوئے ہو، نہیں اندر سے تم غدار ہو، اپنے ساتھیوں پہ جس کو اپنی ٹیم پہ اعتبار نہیں ہے، واللہ ہی وہ کبھی دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اندھا اعتماد کیجیے آپ اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ دینے والوں پہ، وہ کوئی غلط کام کریں گے وہ جانے، ان کا رب جانے، وہ اگر دھوکہ دیں گے تو آپ کو کیا دیں گے۔ لیکن جہاں دنیا داری ہوتی ہے وہاں ہر وقت یہی فکر رہتی، انسیکیورٹیز، نہیں تم مجھے چھوڑ جاؤ گے، نہیں تم یہ کر دو گے، دیکھو تم بدل نہ جانا، پلیز اچھا میں تمہیں کچھ کر دوں، میں تمہیں اپریشیٹ کر دوں۔ تو ایسی چیزوں سے، جھوٹے سہاروں سے حق والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرعون اپنے ساتھیوں پہ شک کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اندر سے کتنا انسیکیور ہے، اور پھر کہنے لگا، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی پہلے ان کو لالچ دیا، بعد میں اب ڈراوے دے رہا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہائی لائٹ کیجئے، یہی جواب آج ہماری زبانوں پہ ہو، لا دیر انا الی ربنا منقلبون، نو پرابلم۔ لا دیر کیا، جس کو آج ہم کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر، نو پرابلم ایٹ آل، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے۔ ان کو کس نے بتایا؟ موسیٰ تبلیغ کر چکے تھے، یاد رکھیے یہ جادوگر ایک دم معجزانہ طور پہ اس طرح نہیں ہوئے، موسیٰ ان تک تبلیغ کر چکے تھے لیکن ابھی دل نہیں کھلے تھے، ایک دم ظاہری نسخہ دیکھا، جب حق باطل کا فرق دیکھا دل کھلے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو دین کی کوئی بات بتانی اور سنانی ہو، بتا دیجئے، وہ دل میں ایک بیج کی طرح محفوظ ہو جائے گی، کہیں کوئی اس کی زندگی میں ایسا موقع آئے گا، اس کو سمجھ آئے گی، وہ اس کو مان لے گا۔ تو تبلیغ کبھی ضائع نہیں جاتی، اچھی بات ضرور کیجئے چاہے وقتی طور پہ آپ کو لگے کہ اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ خیر دن کے شروع میں جادوگر تھے، آخر میں ولی اللہ بن گئے۔ سڈن چینج کیسے آیا؟ سوچ سیدھی تھی، بات پہلے پہنچی ہوئی تھی، جب اس کا عملی نمونہ دیکھا تو مان گئے۔ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں، کئی لوگ تو 10-15 سال سے سوچ رہے ہیں کچھ نیکیاں کرنے کو اور کچھ گناہوں کو چھوڑنے کو، آج تک نہیں چھوڑ سکے، کیونکہ گناہ کو ایک جھٹکے سے چھوڑنا پڑتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ کہتے ہیں کہ نفس دودھ پیتا بچہ، گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو ایسے چھوڑواؤ جیسے بچے سے ماں دودھ چھڑواتی ہے، ایک دفعہ چھڑا دیا چھڑا، روئے گا رو رو کے، خود ہی بھوکا ہوگا، آخر میں پی لے گا، اور بچہ روئے ماں پھر اس کو دودھ دے دے، بچہ روئے پھر دے دے، تو وہ بچے کبھی دودھ نہیں چھوڑتے۔ تو لہٰذا اپنے نفس سے گناہوں کو اسی طرح سے چھڑانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔